श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक माला। श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज के प्रसारण में आप भजन शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक गणेश भजन गायन सीखेंगे। अवतार वाणी के अंतर्गत भगवान द्वारा मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग तथा भगवान की मधुर वाणी में गाया गया एक गणेश भजन सुनेंगे। आज हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 1 जून सन 2001 को अपने मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
ప్రేమ స్వరూపులారా, పవిత్రతను కోల్పోతున్నాడు మానవుడు. తినే పదార్థము మాలిన్యము, త్రాగే నీరు మాలిన్యము, పీల్చే గాలి మాలిన్యము. మనకు రోగాలు రాకుండా ఎట్టపోతుంది? మనం రోగాలు రాకూడదంటే తినే పదార్థం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, త్రాగే నీరు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, పీల్చే గాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. ఎక్కడ ఉందంతా ఏమీ కనిపించటం లేదు. ఎక్కడ చూసినా కానీ మాలిన్యము మాలిన్యము మాలిన్యము. ఆ ఇంప్యూరిటీ అనేటువంటి దాంట్లో ప్యూరిటీని మనం ఎట్లా సాధించగలం? దాని నుంచి ప్యూరిటీ వచ్చినప్పుడే ప్యూరిటీ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ రియాక్షన్ తీసుకుండే మన యొక్క ప్రతిబింబం. కనుక మొట్టమొదట మనము సమాజంలో పవిత్రతను సాధించాలి. ఎవరితో మనం మాట్లాడినప్పటికీ మంచి మృదు మధురంగా మాట్లాడాలి. ద్వేషంగా కానీ అసూయగా కానీ క్రోధంతో కానీ మనం పలకరించకూడదు. అది మొట్టమొదట మనం నేర్చుకోవాలి. యూ కెనాట్ ఆల్వేస్ ఒబ్లైజ్, బట్ యూ కెన్ స్పీక్ ఆల్వేస్ ఒబ్లైజింగ్లీ. ప్రీతిగా మాట్లాడండి. ఒక్క ప్రీతికరమైనటువంటి పలుకు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. మానవుడంతా తల నుంచి కాళ్ల వరకు క్రోధంతో నిండిపోయినాడు. అనిమల్ మాదిరి తయారైపోతున్నాడు ఈనాడు మానవుడు. ఈ అనిమలే చాలా బెటర్ గా ఉంటుండది. అనిమల్ కి ఒక సీజన్ రీజన్ ఉంటుండది, కానీ ఈనాటి మానవుడికి నో సీజన్ నో రీజన్. ఇలాంటిగా ఉండినప్పుడు మానవత్వం అని ఎట్లా చెప్పుకోవడానికి వీలవుతుంది? నేను మానవుడను అని చెప్పుకున్నందుకు నీలో మానవత్వాన్ని ప్రకటించు, నీలో మానవత్వాన్ని ప్రదర్శించు, అప్పుడే నీవు మానవుడు. కేవలం దేహాన్ని ధరించినంత మాత్రమే మానవుడు అవుతాడా? కాదు. దేహానికి తగినటువంటి విలువలు, అది ఏ మానవతా విలువలు? అది ఏ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింసలు? ఇలాంటి మానవతా హృదయములు మనలో లేకుండా మానవత్వాన్ని ధరించి ప్రయోజనం ఏమిటి?
మనుష్య పవిత్రతకో ఖో రహా హై. జో భోజన వహ కర్ రహా హై సబ్ ఘటియా హై, సబ్ కుచ్ అశుద్ధ హై. జిస్ హవా మే తుమ్ సాంస్ లే రహే హో వహ అశుద్ధ హై, తో తుమ్ బీమారియో సే కిస్ తరహ బచోగే? यदि तुम बीमारी नहीं चाहते तो तुम्हें शुद्ध भोजन करना चाहिए. जो पानी तुम पीते हो वह शुद्ध होना चाहिए. जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो वह शुद्ध होनी चाहिए. यह सब कहां है? हम यह सब कहीं भी देख नहीं सकते. जहां कहीं भी हम देखते हैं केवल अशुद्धियां ही दिखाई देती हैं. यदि हम इस कदर गंदगी से अशुद्धियों से घिरे हुए हैं तो भला हम जा कहां सकते हैं? जब हमारे भीतर से पवित्रता बाहर आती है तब हमारे पास प्रतिक्रिया प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि होती है जो हमारे लिए कल्पना है. सर्वप्रथम और सर्वाधिक हमें समाज का कल्याण करना चाहिए. हम जिससे भी बात करें मीठे शब्द बोलें, न घृणा के साथ न ईर्ष्या के साथ. इस तरह तो हमें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए. पहले हमें यही सीखना है. भगवान कहते हैं यद्यपि हम हमेशा विनम्र नहीं रह सकते तथापि हम हमेशा विनम्रता पूर्वक बोल तो सकते हैं, प्रेम सहित बोलो. हालांकि हम उसे कहीं भी देख नहीं सकते, किंतु मनुष्य सिर से लेकर पैर तक केवल क्रोध से भरा हुआ है, यह किसी पशु जैसा हो गया है। भगवान कहते हैं कि पशु हमसे बेहतर हैं। पशु का अपना एक मौसम होता है, एक कारण होता है, किंतु आज आदमी के पास न मौसम है और न कारण है। यदि हम ऐसे ही हैं तो भला कैसे हम अपने आप को मानवीय कह सकते हैं? यदि हम अपने आप को मानवीय कहलाना चाहते हैं तो अपने भीतर मानवता रखो, मानवता दिखाओ। तुम मानवता प्रदर्शित करोगे केवल तभी तुम मनुष्य कहलाओगे। तुम्हारे पास केवल एक शरीर मात्र होने से तुम मानव नहीं हो सकते। इस शरीर का मूल्य मानवता का मूल्य है, और वह है स्वयं सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा। यदि तुम्हारे हृदय में यह मानवता नहीं है तो भला उसका क्या उपयोग है?
కనుకను ప్రేమ స్వరూపులారా, మీ అందరి ఎందుకు మానవత్వాన్ని మొట్టమొదట ధరించాలి, మొట్టమొదట ప్రేమని మీరు ధరించండి. ఆ ప్రేమ చేతనే సర్వము నీకు మిత్రులు అవుతారు, అందరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. ఎటువంటి ఫ్రెండ్? ప్రేమమయమైనటువంటి ఫ్రెండ్. మనకు నిజమైన ఫ్రెండ్ ఎవరు? గాడ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్. గాడ్ అనేటువంటి వాడు ప్రేమమయుడు, పూర్తి ప్రేమతోనే నిండి ఉంటాడు. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణ ముదచ్చతి పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవా వశిష్యతే. భగవంతుడు పరిపూర్ణ ప్రేమ స్వరూపుడు. నీవు భగవంతుని పొందాలనుకుంటుంటే నీవు పరిపూర్ణమైన ప్రేమతో నీవు భగవంతుని ఆశించు. కేవలం వస్తు రూపంలో నీవు భగవంతుని ప్రేమించొద్దు, ప్రేమ రూపంలో భగవంతుని ప్రేమించు. ఆ ప్రేమ చేతనే ప్రేమ స్వరూపుడు మీకు దక్కుతాడు.
ప్రేమ స్వరూపో పహలే మానవతా ప్రదర్శిత్ కరో, ప్రేమ పహలే దిఖాఓ. ఇసి ప్రేమ కే ద్వారా సబ్ లోగ్ తుమ్హారే మిత్ర బన్ జాయెంగే. కిస్ ప్రకార కే మిత్ర? प्रेम से परिपूर्ण मित्र। केवल ईश्वर ही हमारे लिए वास्तविक मित्र हैं। ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण हैं, वे प्रेम से संपूर्णतः आच्छादित हैं। ईश्वर जो हैं वे पूर्णतया प्रेम स्वरूप हैं। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास उनके लिए संपूर्ण प्रेम होना चाहिए। केवल सांसारिक वस्तुओं के लिए तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वयं क्रियात्मक प्रेम से उनसे प्रेम करो, वह स्वयं तुम्हें प्रेम प्रदान करेगा।
దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, అందరియందు ఆత్మ ఒక్కటే, అందరియందు ప్రేమ ఒక్కటే, అందరియందు దైవం ఒక్కటే. దైవమునకు గుణ రూపము లేవు. ఏక ప్రభువుక అనేక నామ, అనేక పేర్లు ఉండవచ్చును, కానీ భగవంతుడు ఒక్కడే. అలాంటి ఏకభావాన్ని నీవు తలుచుకుని దైవ ప్రేమను నీవు పెంచుకుంటురా, నీ హృదయమంతా ప్రేమమయంగా అవుతుంది. అప్పుడు ఈ హృదయం నుంచి వచ్చేటివన్నీ ప్రేమ వాక్కులే అవుతాయి. కనుకనే హృదయాన్ని మొట్టమొదట మన ప్రేమ ట్యాంక్ గా మనం నింపుకోవాలి. మన దృష్టి అంతా కూడాను ట్యాప్స్, మన నాలుక ట్యాప్స్, మన శ్రవణము ట్యాప్స్, ఇవన్నీ కూడా ట్యాప్స్ మాదిరి ఉంటున్నాయి. నీవు ప్రేమలో నీవు నింపుకుంటే ఏ ట్యాప్ తిప్పినా ప్రేమనే వస్తుంది. కనుక నీవు ఇతరులో చూసేటువంటి ద్వేషములంతా కూడాను నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతిబింబాలే. ఇతరుల యందు ఉండేటువంటి కాదాదులు దోషములు, నీ దోషములే ఆ వ్యక్తి అంతా నీకు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఇన్నర్ బీయింగ్, నీ ఇన్నర్ బీయింగ్ ఏ వస్తుంది అది. కనుక నీవు ఇతరుల ఎందు చెడ్డను నువ్వు చూస్తున్నావంటే ఇతరులు ఎందు కాదు చెడ్డ, నీ ఎందే చెడ్డ ఉంది. కనుక ఈ చెడ్డ నాదే కాని అతనిది కాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని మొట్టమొదటి గుర్తించాలి. నీ దాని నువ్వు చూసి భ్రమిస్తున్నావు.
దివ్యాత్మకే సాకార స్వరూపో, ప్రత్యేక మనుష్యమే ఏక్ సమాన్ ఆత్మా స్థిత్ హై. సారా ప్రేమ్ ఏక్ సమాన్ హై. सभी मनुष्यों में एक ही ईश्वर है, केवल स्वरूप भिन्न भिन्न है। एक प्रभु के अनेक नाम, वहां अनेकों नाम हो सकते हैं किंतु ईश्वर केवल एक है। इसी एक विचारधारा को सीखो, अपने आप के भीतर प्रेम बढ़ाओ, तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। जो भी शब्द तुम बोलोगे वह प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। अपने हृदय को प्रेम की टंकी बनाओ। हमारी दृष्टि नल की तरह है, हमारी जीभ और मुंह नल की तरह हैं, हमारे कान नल की तरह हैं, यानी यह सब नल की तरह हैं। यदि टंकी प्रेम से लबालब भरी हुई है तो तुम कोई भी नल खोलो, प्रेम ही बाहर आएगा। तुम जो भी घृणा नफरत दूसरों में देखते हो वह केवल तुम्हारा स्वयं का प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारी आंतरिक भावना का प्रतिबिंब मात्र है। यदि तुम दूसरों में दोष ढूंढते हो तो वह दोष उनका नहीं बल्कि तुम्हारा अपना है।
प्रेम स्वरूप प्रेम अदे दैव अदे आत्मा अदे सर्वमु సర్వము అయినటువంటి యొక్క ఈ ప్రేమను మనం విసర్జించి లౌకికమైన ధనము ధాన్యము ఇవన్నీ కూడా మనం ఆశిస్తుంటే ఎంతకాలం ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ధనం 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 ఏమిటి ఈ మనీ? మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్ బట్ మొరాలిటీ కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. ఆ మొరాలిటీని పెంచుకో. ఏమిటి ఈ ధనము? ఎవరు చూసినా ధనము ధనము ధనము. ఈ ధనం మనకేమైనా కూడి తీసుకుపోతుందా? ఎప్పటికీ తీసుకుపోదు. అన్ని మనలో ముంచిపోతుంది. ధనము కాదు మనం రక్షించేది, పుణ్యధనమే మనకు రక్షించేటువంటి. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. పుణ్యధనాన్ని మనం ప్రోగు చేసుకోవాలి. ఈ పాడు ధనం మనం ప్రోగు చేసుకోకూడదు. ఇంత సంపాదించాడు అలెగ్జాండరు, పోయే సమయంలో ఏమైపోయాడు? ఒట్టి చేతులతో పోయాడు. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడా ధనాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళంతా వెళ్లే సమయంలో ఒట్టి చేతులతోనే పోవాలి. వాణి వెంట జంట ఇంట కూడాను ఒక కాసైనా కూడా
తీసుకోవడం. हम सब एक समान हैं और वह जो स्वयं ही भगवान है वह है आत्मा, वही सब कुछ है। तुम यह सारा प्रेम भूल चुके हो। तुम धन वैभव जैसी सभी भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हो। जहां कहीं भी तुम जाओ बस पैसा 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 है। आखिर क्या है यह पैसा? पैसा आता है और चला जाता है, किंतु नैतिकता आती है और बढ़ती जाती है। यही नैतिकता अर्जित करो। धन की चाहत रखने वालों को तुम देखते ही हो। क्या इससे हमें कुछ हासिल होता है? यह कभी हमारा साथ नहीं देता। यह सब निरंतर पतन की ओर ही जाता है। यह कभी हमारी रक्षा करने नहीं आएगा। केवल पुण्य धन ही हमारी रक्षा करेगा। दूसरों की सहायता करना पुण्य है, दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। केवल पुण्य धन अर्जित करो। हमें पाप का धन कभी नहीं रखना चाहिए। सिकंदर ने कमाया, बहुत अधिक धन संग्रह किया, किंतु जब उसने प्राण त्यागे तो क्या अपने साथ सब ले गया? कोई भी हो और उसने किसी भी तरह कितना भी क्यों न कमाया हो, अपने साथ वह एक पैसा भी नहीं ले जा सकता।
मनम तीसुपयेदि पुण्यमेव वक्कटे పవిత్రమైన భావమే మనకు కావాలి. దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి గుణములే మనం పెంచుకోవాలి. కనుకనే అవే మనం వెంట తీసుకుని పోయేటువంటివి. ఏవి మన వెంట రాదు. మనం ఇంత మట్టి కూడా మనం వెంట తీసుకుపోము. నిజంగా మట్టి కూడా మనం తీసుకుని పోతుంటే మట్టి కూడా మన భారతదేశంలో రేషన్ గా ఉండేటువంటిది. కనుకనే మట్టి కాదు మనం తీసుకుపోవాల్సింది, పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను తీసుకుని పోవాలి. ప్రేమ మార్పు లేదు, కూర్పు లేదు. ఆ పవిత్రమైన ప్రేమను మనం సంపాదించుకుంటే మనకంటే మించినటువంటి శ్రీమంతుడు లోకంలో లేడు. యు ఆర్ ది రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. హూ ఇస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? హీ హూ హ్యాస్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్. హూ ఇస్ ది పూరెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్? హూ హూ హ్యాస్ మచ్ డిజైర్. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా కానీ కాళ్ళ మొదలు తల వరకు డిజైర్స్ డిజైర్స్ డిజైర్స్. ఈ డిజైర్స్ ఉండినంత వరకు మానవునికి సుఖము శాంతి లేదు. ఈ డిజైర్ ని ఎప్పుడు మనం వదులుతామో అప్పుడే మనకు శాంతి లభిస్తుంది.
हम अपने साथ केवल पुण्य ले जाते हैं, केवल अच्छी भावनाएं। हमें दैवत्व और नेकी के गुणों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि यही वो वस्तु है जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, और कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। यहां तक कि एक मुट्ठी भर धरती भी हम नहीं ले जा सकते। यदि हम अपने साथ मिट्टी भी ले जा सकते तो भारत में मिट्टी पर भी राशनिंग लागू हो जाती। हम अपने साथ मिट्टी नहीं ले जाना चाहते। हमें अपने साथ शुद्ध प्रेम ले जाना चाहिए। प्रेम का कोई परिवर्तित रूप या अल्प स्वरूप नहीं है। यदि हम यह विशुद्ध प्रेम अर्जित कर लें तो हमसे ज्यादा धनी मनुष्य इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? वह जिसके पास भरपूर संतुष्टि है। इस दुनिया में सबसे निर्धन इंसान कौन है? वह जिसकी इच्छाएं अधिक हैं। चारों तरफ जहां भी हम देखते हैं, सिर से लेकर पैर तक तुम्हारे पास केवल इच्छाएं ही इच्छाएं हैं। जब तक तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं तुम खुश नहीं हो पाओगे। तुम शांति केवल तभी पा सकोगे जब अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे।
प्रेम स्वरूपलारा मीरु ई डिजायर्स वदलि मीरु चूडंडि एंत प्रेम मीकु लभिस्तुंदो జీవితంలో అనుభవించలేనిటువంటి ఆనందాన్ని కూడాను మీరు అనుభవించవచ్చు. సర్వానందంలో నీ అందే ఉంటున్నాయి. కేవలం బయట ఉన్నదండి భ్రాంతిస్తున్నావు. బయట ఉన్నదంతా కూడా రిఫ్లెక్షన్ రియాక్షన్ రీసౌండ్. అంత రియాలిటీ నీలో ఉంది. నీవు మంచివాడైతే సర్వము మంచి అవుతుంది. నీవు బ్లూ గ్లాసెస్ వేసుకుంటే సర్వము బ్లూగానే కనిపి, నీవు రెడ్ గ్లాసెస్ వేసుకుంటే సర్వము రెడ్ గానే కనిపి. కనుకనే నీవు ధరించేటువంటి యొక్క సత్తరజో తమ గుణాలే నీకు ప్రధానమైన ఆస్తులు. కనుకనే నీవు సాత్వికమైనటువంటి గుణాన్ని పెంచుకో. ద్వేషాన్ని మనం దూరం నెట్టేయండి. ఈ యొక్క అహింసను సాధించాలి. అది అహింస పరమో ధర్మ అని. ద్వేషాన్ని మనం నిర్మూలం చేయాలి. క్రోధాన్ని చంపివేయాలి.
ప్రేమ స్వరూపో తుమ్ ఇన్ ఇచ్ఛాఓ కా త్యాగ్ కరో ఔర్ ఫిర్ దేఖో కితనా అధిక్ ప్రేమ తుమ్ పాతే హో. తుమ్ ఉస్ ఆనంద్ కా అనుభవ్ కరోగే జో తుమ్నే ఆజ్ తక్ నహీం కియా. సారా సుఖ్ తుమ్హారే భీతర్ హై और तुम कल्पना करते हो कि वह कहीं बाहर है. बाहर जो कुछ भी है वह केवल प्रतिबिंब प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि मात्र है. संपूर्ण वास्तविकता तुम्हारे भीतर है. यदि तुम एक अच्छे मनुष्य हो तो सब कुछ अच्छा होगा. यदि तुम नीला चश्मा पहनोगे तो तुम्हें हर वस्तु नीली ही दिखाई देगी. यदि तुम लाल चश्मा पहनते हो तो तुम्हें हर वस्तु लाल दिखाई देती है. सद्गुणों के वैभव की रचना करो. सात्विक गुणों का विकास करो. घृणा द्वेष को दूर फेंको. अहिंसा का प्रचार करो. अहिंसा परमो धर्म है.
शुक्लाम्बर गरम गणपति मंत्रम
आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 1 जून सन 2001 को अपने मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम बिहार राज्य संगठन के लखीसराय से पधारे श्रद्धालु श्री उमाशंकर शर्मा जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 5 मार्च सन 2018 को रिकॉर्ड की गई थी।
ओम साई राम। रेडियो साई से प्रसारित हिंदी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रशांति निलयम से हमारी पूरी टीम का साई राम। श्रोताओं, आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है श्री उमा शंकर शर्मा। ये लखीसराय बिहार से आए हैं और बिहार झारखंड ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। सन 75 से स्वामी की सेवा में और भक्ति में संलग्न हैं। उमा शंकर जी, साई राम।
जी साई राम।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्वामी के पास सबसे पहले कैसे आए? कुछ किताब पढ़ के या किसी ने कुछ कहा या तस्वीर देखी? कुछ तो हुआ होगा।
इसके पीछे एक बड़ी तो अद्वितीय बात है
जी।
मैं एक कथाकार भी हूँ
जी,
और हर स्टेट में जाकर
हाँ जी
मैं कथा कहता हूँ। तो उस जब तक मैं कथाकार के रूप में था
जी।
और इनके विषय में जब कुछ भी जानकारी मिलती थी तो मैं अपोज करता था कि वो ऐसा हो नहीं सकते हैं, ईश्वर हैं, लोग कहते हैं इनको ईश्वर हैं, तो ये क्या कैसे हो सकता है, चूंकि ईश्वर की परिभाषा है, ये सारी चीजें हैं, ऐसा है ऐसा है।
सर, ये कथाकार मतलब कथावाचक?
जी जी,
जो राम की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का, भगवत लीलाओं का,
वो जो चर्चा वाचन
जी जी
जी। तो स्टेज पर से जब ऐसी कुछ भी चर्चा आती थी तो इनके ईश्वरत्व पर वो हम थोड़ा सा अपोजिटर चर्चा करते थे। एक दिन की घटना है कि तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भक्त इनवाइट किए हमको कि आप हमारे यहाँ भी आइए और आज हमारे यहाँ आयोजन है। मैं उपस्थित हुआ और उस आयोजन में सामने जो ये बाबा का फोटो था तो आरती होने लगी और मैंने कुछ कहा नहीं, चूंकि सब लोग को पता था कि ऐसा कुछ ये कहेंगे तो हम लोगों के लिए शायद अच्छा न हो। तो बाबा की आरती होने लगी और आरती को मैं सामने से, जो ही सामने उनसे हमारा फेस सामने हुआ तो मुझे ये लगा कि बाबा साक्षात वहां खड़े हैं और कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह की बात सामने आई कि कुछ कहना चाहते हैं।
प्रतिवाद किए बिना
हाँ,
आरती में खो गए।
आरती में हम खो गए
जी।
अब खो गए तो उसमें हमने एक बात उनसे कही अपने हृदय अंतस्त में कि ठीक है, सब लोग आपको ईश्वर कहते हैं, यदि आप ईश्वर हैं तो ईश्वर की एक ऐसी भी परिभाषा है कि अंदर हृदय की जो बात है वो तो आप अवश्य ही जानते हैं।
बिल्कुल।
तो यदि आप ईश्वर हैं तो हमारे जो इष्ट देव हैं उनके साक्षात स्वरूप में आकर के आप ये दर्शन दें हमें, यदि ऐसा हो तो मैं अंगीकार कर लूंगा कि आप ईश्वर हैं
जी।
इतने समय में आरती हो गई। आरती होने के बाद हम लोग आपस में अभिवादन किए और अपने आवास पर आ गए। उसी रात भोर में 4 बजे क्या होता है कि हमारी आंख आधा है बंद आधा है ओपन, और मैं प्रत्यक्ष ये देख रहा हूं कि एक तरफ ये बाबा खड़े हैं, एक तरफ हमारे इष्ट देव खड़े हैं।
वो कौन से देवता हैं?
रामचंद्र जी हैं जी, वो हमारे इष्ट देव हैं। तो एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ वो खड़े हैं, और दोनों हाथ आपस में ऐसे किए हैं, और ये बाबा कह रहे हैं कि लो ये तुम्हारे इष्ट देव है ना, ये देखो सामने है या नहीं। और इतना कहते हुए वो कहते हैं कि तुम एक कथाकार हो और ईश्वरत्व पर इतनी तुम्हारी तनास्था, जो अब तक मैंने हमारे विषय में चर्चा कर चले थे, जो है राम वो हूं मैं, ऐसे करके ये दोनों एक साथ खड़े हैं।
उनके दैवत्व के विषय में
जी
जो संदेह आपके मन में था,
हाँ,
अंतर्यामी ने न सिर्फ उसको भांप लिया
जी,
संदेह को निवारण करने के
जी,
लिए
जी, जी,
स्वयं आके आपका संदेह निवारण
जी जी
बहुत बहुत
उन्होंने किया
जी।
और उस समय हम खो गए, उस समय हमको ये होश न रहा कि हम ये कहाँ पे हैं, क्या हैं, क्या हैं। फिर वो अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान हो गए तो हमारी आंख अच्छी तरह से खुली। उस समय एक घंटे तक हमारा स्पंदन बिल्कुल अलग रहा और असुरधारा आने लगी। उसके पश्चात वो करीब 6 माह हो गए होंगे, तो मैं यहाँ आया, आश्रम आया। एक इम्प्लाई थे, ईशु था फर्स्ट क्लास का, उनको पपास, वो बोले कि आप एक काम कीजिए, हमारे अटेंडेंट के रूप में आपसे चलिए और वहां ले चलते हैं।
परती की वो पहली यात्रा
जी, फर्स्ट यात्रा थी, वो 1975 की घटना है, फर्स्ट यात्रा थी। मैं यहाँ आया, आने के बाद उस समय जिस तरह की पंक्ति थी, जैसा स्थिति थी, 3 दिन तक मैं यहाँ रहा। बाबा हमारे और एक बार भी देखे नहीं, आते थे आके सीधे चलते बनते थे। तो हमें आश्चर्य हुआ कि हमको ऐसा लगता है कि हमने जो उनको कष्ट पहुंचाया, उनकी परीक्षा जो ली, इसलिए बाबा हमारे तरफ देख नहीं रहे। वो अपने आप में एक ये पश्चाताप हमें धो रहा था कि हमने ऐसी क्यों गलती कर बैठी,
दिव्यत्व पर प्रश्न क्यों,
हाँ ऐसा क्यों हमने गलती कर बैठी। मैं कथावाचक हूँ, मैं ईश्वर के अवतार की ही चर्चा हर जगह करता हूँ, और ऐसी करुणा इनकी है, इन्होंने ऐसा कर दिया और मैंने इनको इतना कष्ट पहुंचाया, ये मुझे हो रहा था, इसीलिए बाबा सीधे आते हैं और चलते बनते हैं। 3 दिन के बाद यहाँ से फिर मैं गया अपने आवास पे
जी।
फिर जिस स्थल पे मुझे वो घटना हुई थी, उसी जगह आके स्वतः बाबा फिर खड़े हो गए कि बहुत अफसोस है ना, तुम जो हमारी परीक्षा की थी, बहुत अफसोस हुआ ना। ठीक है, चिंता मत करना, मैं तो हर स्थान पे हूँ, मैं बिल्कुल कणकण में हूँ, कोई जगह ऐसा खाली नहीं है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, और अब से तुम संगठन का जो कार्य है उसमें आओ।
आप तभी से संगठन से जुड़े हुए?
उसी समय से।
अच्छा।
उसी वक्त से, वो जो कार्य था मेरा, वो भी कथा भी मैं ये कहते रहा, उस समय से जिस जिस स्टेज पर मैं जाता आता था, खम ठोक के कहना मैंने आरंभ किया, इस कलयुग में अवतार आ चुके हैं और ये धरती पर हैं, और जिसको आना हो आओ और आनंद उठाओ,
दर्शन का अमृत पाओ,
उनसे जीवन को सार्थक ये करो। उस समय से मैं खुलेआम कहना शुरू कर दिया। और आश्चर्य का विषय ये है कि एक भी व्यक्ति, एक भी ऐसा कोई नहीं हमको उसके बाद से मिला जो कि ऐसा चैलेंज करे कि आप ये क्या कहे जा रहे हैं, अवतार कैसे हो सकते हैं, ये एक भी व्यक्ति नहीं मिला।
कभी किसी ने नहीं,
कभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि अवतार है नहीं या आप क्यों कहे जा रहे हैं, ऐसा कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया।
स्वामी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी है, जिस चीज को आपने स्वतः अनुभव किया है, आपके मन में बस गई है जो बात, अपना विश्वास मन में रखना, खुद विश्वास करना एक बात होती है, वो विश्वास दिलाना और समझाना बहुत कठिन होता है। इस काम को आप बच्चों में और बड़ों में, खास करके युवाओं में, जो अगली पीढ़ी संभालने वाली है बाबा की पूरी धरोहर को, उनके मन में आप ये विश्वास कैसे जगाते हैं, उन्हें किस किस तरह प्रेरित करते हैं, जरा बताइए।
जी जी जी, उसमें ऐसा है कि मैं तो हर क्षेत्र में आता जाता हूँ
जी,
ये पीढ़ी जो आजकल की है, तो आजकल की पीढ़ी तो अपनी फिजिकल आवश्यकता से वो बड़ा ये ऐसा है कि उसका जो भी एजुकेशन होता है या जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका रहता है कि फिजिकल आवश्यकता की आपूर्ति कैसे हो। अध्यात्म को उतना वो न छू पाता है, इसलिए कि वो इस तरह से मैं जिस जिस जगह जाता हूं और वहां उन लोगों को उपस्थित करके और पहले उन लोगों से पूछता हूं, ये पूछता हूं इस तरह से कि तुम बताओ कोई इष्ट में किन्हीं में कुछ तुम्हारी आस्था है क्या। मैं एक कवि भी हूं और इस अनुरूप में मैंने स्कूल में और ये कॉलेजेज में आ जाके एक अभियान ये चलाया था, क्योंकि आजकल तो फिल्मी स्थिति बनी है ना, आजकल तो छात्र जो है सो आजकल ये टीवी पर और दुनिया पर, तो स्कूल और ये कॉलेजेज में मैंने उपस्थित होकर ये भगवान का जो फिलोसफी है उसकी चर्चा की और छात्र को खड़ा करके उसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ बेटे तुम्हें फिल्म का ऐसा कौन सा है जो तुम्हें अच्छा लगता है कुछ उच्चारण करने में या कुछ दो कुछ तो उनका करते हो, तो
चूंकि रुचि को
उसके अंतर्गत चूंकि मैं कवि हूं और तत्क्षण में कविता करता हूं ऐसा उसके लिए कुछ मुझे करना नहीं पड़ता है। तो एक छात्र खड़ा हुआ, वो बोला कि सर मुझे एक बहुत अच्छा फिल्म का गाना अच्छा लगता है। मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या अच्छा लगता है। उसने कहा कि सर मुझे अच्छा लगता है छुलेने दे नाजुक होठों को।
फिर आपको इसने परिवर्तित किया
अब स्वामी की, अब इसमें हमने किया उसी समय कि ऐसा करो बेटे छुलेने दे इनके चरणों को, कोई और नहीं भगवान है कौसल्या के ये रघुवर हैं, जसोदा के घनश्याम है ये छुलेने दे इनके चरणों को। अब सारे कॉलेजेस के जितने छात्र थे सब बना के कि सर मैं ये कल से उच्चारण करूंगा छोड़ दूंगा उसको, मुझे अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अब ये चाहिए मुझे, अब ये आगे कहिए।
कितना नया तरीका आपने अपनाया है
जी जी जी,
बच्चों के मन को उस चीज के माध्यम से
जी जी जी
जो उन्हें पसंद है
जी जी जी,
वरना लगता है कि हम भाषण दे रहे हैं
दे रहे
जो आपने कभी नहीं किया
जी जी। फिर अगला छात्र को मैं ये करता हूँ खड़ा कि बेटी तुम बताओ तो कौन सा ये अच्छा लगता है गाना। वो खड़ा हुआ, वो कहता है कि मुझे तो सबसे अच्छा गाना लगता है जैसे चांदी की दीवार तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
इसको आपने कैसे बदला?
हमने तत्क्षण कहा कोयल की बानी में माता साई जननी कूक रही, बिना पानी परिसर में माँ सरस्वती कुछ गूंज रही, कोयल की बानी में माता साई जननी कूक रही। उसी समय शपथ खा लिया कि मैं अगले दिन से अब मैं छोड़ूंगा उसे, अब मैं इसी को अपनाऊंगा। इस तरह से अनेक स्कूल और ये कॉलेजेज के छात्रों को मैंने बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और फिल्मी अब जो होता है गाना उसे अब छूना पसंद नहीं करता है।
आपके गायन वाचन कथन लेखन और भी जो जो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं ईश्वर करें कि उनका उत्तरोत्तर विकास हो और उन सारी प्रतिभाओं को जो ईश्वर ने आपको दी हैं उन्हें आप ईश्वर के ही कामों में समर्पित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो साई की ओर से। मैं सब आपको आभार व्यक्त
साई राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत श्री उमाशंकर शर्मा जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई। टीम रेडियो साई की ओर से शर्मा जी से मुखातिब थी श्रीमती नीताजी बनर्जी।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
साई राम, साई प्रेम वाणी के लोकप्रिय भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं सन 1957 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन, जबकि वेंकटगिरी में अखिल भारतीय दिव्य जीवन संस्थान नामक एक आध्यात्मिक संगठन के महासम्मेलन की भगवान बाबा ने अध्यक्षता की। इसी सम्मेलन में स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद ने भगवान बाबा के दिव्य सानिध्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। भगवान श्री सत्य साई बाबा के अलौकिक अवतार काल में ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस घटना के माध्यम से स्वामी ने अनेक सन्यासियों को अपने दिव्यत्व का परिचय कराकर अनुग्रहित किया था। तो आइए आनंद लेते हैं इस घटना का।
अखिल भारतीय स्तर के दिव्य जीवन संस्था नामक एक आध्यात्मिक संगठन का 9वां महासम्मेलन सन 1957 में वेंकटगिरी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी करने वाले थे। ये सम्मेलन भगवान बाबा के युग निर्माण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। साधना तथा गहन आध्यात्मिक विषयों पर स्वामी ने अपने उद्बोधनों में बहुत स्पष्ट और एक नया प्रकाश डाला। स्वामी सच्चिदानंद दिव्य जीवन संस्था के संयोजक सचिव थे। उन्होंने स्वयं ये बताया कि जब वे तिरुवन्नामलाई में थे तब उन्हें ये जानकारी मिली कि सत्य साई बाबा इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये समाचार सुनकर वे थोड़े संशय में आ गए, वो सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछताछ की कि ये सत्य साई बाबा कौन हैं। उन्हें उत्तर मिले कि वे एक जादूगर से हैं, छोटी आयु के हैं, अनुभव कम है, भाषण नहीं कर सकते, महासभाओं में उन्हें कभी देखा नहीं गया। स्वामी सच्चिदानंद जी को ऐसे अनेक उत्तर मिले। उन्हें सब सुनकर लगा कि कार्यक्रम में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए इस कमी को पूर्ण करने के लिए उनका जाना अनिवार्य है। ये सोचकर स्वामी सच्चिदानंद वेंकटगिरी के सम्मेलन में आए, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद ने बाद में स्वयं बताया कि शीघ्र ही उन्होंने जान लिया कि उन्हें बाबा के विषय में सूचना देने वालों को वास्तव में सही जानकारी नहीं थी और उनकी बाबा के प्रति पहली धारणा भी अनुचित थी। सम्मेलन के प्रथम दिन सारे वेंकटगिरी में लोगों की भीड़ जमी हुई थी। ऋषिकेश, राजमहेंद्री, कालहस्ती, मद्रास आदि स्थानों से बड़ी संख्या में सन्यासियों तथा दिव्य जीवन संस्था के सदस्यों, प्रतिनिधियों, आगंतुकों, भक्तों और दर्शकों से वो स्थान भर गया था। लोगों की इतनी भीड़ थी कि सड़कों पर चलना भी कष्टप्रद हो गया। वेंकटगिरी के राजा की कोठी के सामने सम्मेलन के लिए बनवाए गए शामियाने में बाबा के आगमन के लिए एक फूलों से सजी पालकी तैयार कर रखी गई थी। उसमें बैठकर बाबा को समारोह के शुभारंभ स्थल तक ले जाया जाना था, परंतु बाबा ने उस भव्यता को स्वीकार नहीं किया और वेंकटगिरी के महाराज से कहा कि यहां बहुत से सन्यासी हैं और मैं उनके साथ पैदल चलकर जाना पसंद करूंगा। स्वामी सबके साथ पैदल ही चले। स्वामी सदानंद, सच्चिदानंद, आत्मस्वरूपानंद, श्रीनिवासानंद आदि सन्यासियों के साथ पैदल बाबा की वो यात्रा मानो योगियों की एक अलग दुनिया की योगेश्वर के साथ यात्रा थी। स्वामी सच्चिदानंद ने दिव्य जीवन संस्था का ध्वजारोहण किया। स्वामी सदानंद अनेक ग्रंथों के रचयिता थे, जिनमें सन्मार्ग दीपम, महाशक्ति, पतंजलि योग दर्शन पर एक व्याख्यान इत्यादि प्रमुख हैं। इन्हीं स्वामी सदानंद ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। यहां एक वर्णन और आवश्यक है। वेंकटगिरी में सवेरे कुछ अज्ञानी लोगों ने बाबा के संबंध में कुछ अनर्गल से उल्लेख छपवाकर वितरित करवाए थे, जिनमें बाबा पर धनवानों के पक्ष में भेदभाव करने और वैभवशाली व भव्यता प्रिय होने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसे जिन रास्तों पर लोगों में बांटा गया था उसी रास्ते पर बाबा ने आडंबर रहित होकर फूलों की पालकी की अवहेलना कर वेंकटगिरी के महाराजा की इच्छा को अस्वीकार कर उस सारी सड़क को पैदल पार करना ही उचित समझा। स्वामी सदानंद ने इस घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि ऐसे अज्ञानी लोगों ने कितना बेतुका और हास्यास्पद कार्य किया, क्योंकि बाबा बिना किसी आडंबर के उन सभी के साथ पैदल ही वहां पहुंचे। उन्होंने प्रतिनिधियों और आयोजकों को इस बात की बहुत बधाई दी और इसे सौभाग्य बताया कि बाबा दिव्य जीवन के लिए मार्गदर्शन देने हेतु यहां पधारे हैं। अपने अध्यक्षीय भाषण में बाबा ने बताया कि दिव्य जीवन प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल मानव ही नहीं, अणु से लेकर वृहत तक सृष्टि की प्रत्येक रचना के पीछे दिव्यता की शक्ति ही कार्य कर रही है। प्रत्येक कण सदा सर्वदा दिव्यता की ओर ही जा रहा है। दिव्य जीवन एक ऐसी वर्षा के समान है जो कि सत्य, प्रेम व अहिंसा के बादलों से बरसती है। माया रूपी विविधता के पीछे छुपी वास्तविकता की तलाश करने के सारे कार्य दिव्य जीवन के ही मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यता प्रत्येक तत्व में ठीक उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार दूध में मक्खन छुपा होता है। जैसे ही हम दूध को मथते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने मन को अच्छे कार्यों व सत्संग से मंथन करना चाहिए तो दिव्यता मक्खन की भांति स्पष्ट अनुभव में आने लगेगी। मनुष्य का मन अनंत परमात्मा और परिवर्तनशील संसार के मध्य डोलता रहता है। दिव्य जीवन संस्था जैसी संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने सदस्यों के मन को पवित्रता से भरने और काम क्रोध जैसे दुर्गुणों को अलग कर उन्हें अपने जीवन को दिव्य बनाने में सहायता प्रदान करें। इस रूपांतरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और आनंद का स्वाद सबके लिए एक समान है। बाबा ने यह भी कहा कि दिव्य जीवन समाज को सभी के लिए एक समान प्रेम की प्राप्ति के लिए इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए और चिंता, दुख और अज्ञानता के मूल कारणों को निकाल बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभासदों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म को अनेकों बार आघात लगे। कई बार वो दीपक बुझने ही वाला था। अनेकों ने हिंदू धर्म का खंडन किया, उपेक्षा की, दूषित बताया, त्याग भी दिया, किंतु इस धर्म के अनमोल तत्व रत्नों को कुछ लोगों ने धैर्य से सुरक्षित रखकर उसकी जड़ों को सिंचित कर सनातन धर्म के सिद्धांतों को जनता के हृदय में पुनः स्थापित किया। बाबा ने कहा, मैं सबके हृदय में प्रेम का दीपक जलाना चाहता हूं। और उन्होंने सबको समझाया कि वे श्रद्धा तथा प्रेम के वातावरण को सुरक्षित रखें। बाबा ने तीन गुणों अर्थात सत, रज व तम का वर्णन करते समय वहां स्थित एक लालटेन देखकर उसी का उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए वो कांच की चिमनी ही सतो गुण है, उसके बाहर लगी हुई धूल ही रजोगुण है, अंदर की ओर लगी हुई कालिमा ही तमोगुण है। ये तीनों उस आत्मा के अंतः प्रकाश से हम लोगों को दूर करते हैं।
साई राम, अभी हमने सुना कि प्रेम स्वरूप भगवान ने अपने प्रेम के माध्यम से अनेक योगियों का हृदय जीत लिया। गहन आध्यात्मिक गहराई से साधना में रत योगियों को योगेश्वर भगवान श्री सत्य साई बाबा ने आध्यात्मिक ज्ञान के सच्चे स्वरूप का आभास कराया और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को सरल उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया। विद्वत जनों के पोषण के लिए युग अवतार भगवान श्री सत्य साई बाबा की वेंकटगिरी के सम्मेलन की घटना एक अद्भुत अवसर था, जबकि इतनी बड़ी संख्या में योगी और योगेश्वर दोनों साथ साथ थे। सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए इन अलौकिक प्रसंगों का आनंद अगले भाग में पुनः लेंगे। जय साई राम।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासुलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
पाहि पाहि गजानना।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान गणेश की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
पाहि पाहि गजानना, पार्वती तनया गजानना, मूषिक वाहन गजानना, मोदक हस्ता गजानना, चामर कर्ण गजानना, विलंबित सूत्र गजानना।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक भी कहते हैं।
पाहि पाहि गजानना,
पाहि पाहि गजानना,
पाहि पाहि गजानना,
पाहि पाहि गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
मूषिक वाहन गजानना,
मूषिक वाहन गजानना,
मूषिक वाहन गजानना,
मूषिक वाहन गजानना,
मोदक हस्ता गजानना,
मोदक हस्ता गजानना,
मोदक हस्ता गजानना,
मोदक हस्ता गजानना,
चामर कर्णा गजानना,
चामर कर्णा गजानना,
चामर कर्णा गजानना,
चामर कर्णा गजानना,
विलंबित सूत्र गजानना,
विलंबित सूत्र गजानना,
विलंबित सूत्र गजानना,
विलंबित सूत्र गजानना,
पाहि पाहि गजानना।
कहरवा ताल और राग हंसद ध्वनि पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त हुए तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी हम इस भजन की एक दो पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म के अनुसार भगवान गणेश का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। इसका गूढ़ार्थ क्या है? भगवान ने एक बार कहा था, आपको आश्चर्य होता होगा कि एक छोटा सा चूहा कैसे भगवान गणेश के विशालकाय शरीर को अपनी पीठ पर धारण करता होगा। यहाँ चूहा अज्ञानता का प्रतीक है। चूहे प्रायः अंधकार में ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस तरह से मूषक वाहन का अर्थ हुआ वे जो अज्ञान पर काबू पाकर उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देते हैं वे। सन 1985 के गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिए गए प्रवचन में भगवान बाबा ने कहा, आप देखिए गणेश जी ने किस वाहन को चुना, मूषक को अर्थात चूहे को। चूहा गंध की ओर अग्रसर होता है और उससे अपना विनाश भी कर लेता है। इसी तरह मनुष्य भी वासनाओं के अधीन है। वासना बीज के रूप में मन में रहती है और ये बीज मनुष्य की किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के प्रति झुकाव से निर्मित होता है। भगवान गणेश इन वासनाओं को दबाकर या कुचलकर नष्ट कर देते हैं जो मानव को गलत दिशा की ओर ले जाती हैं और उसके पतन का कारण बनती हैं। हम लोगों ने अपने पिछले कई जन्मों की वासनाओं को संजोकर रखा है और ऐसा लगता है कि इनसे छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन भगवान का कहना है कि अगर हमारा रुख ईश्वर की तरफ हो तो ये लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाती है। भगवान हमारे भीतर व्याप्त सभी अवगुणों को समाप्त कर हमें ईश्वर से एक हो जाने के लिए दिन प्रतिदिन समीप ले जाते हैं। भगवान गणेश को जो मोदक अर्पण करते हैं उसके बारे में भगवान कहते हैं कि मोदक एक विशेष प्रकार का मिष्ठान होता है जिसे तेल के बजाय भाप में पकाया जाता है। तिल, चावल का आटा और गुड़ को मिलाकर उसके गोले बनाए जाते हैं, फिर भाप में उन्हें पकाया जाता है और तब गणेश जी को उसे अर्पित किया जाता है। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि विनायक को ऐसे खाद्य पदार्थ क्यों अर्पण करते हैं। तिल आंखों के लिए अच्छी होती है और तेल के बजाय भाप में पके होने के कारण ये खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया को सुदृढ़ रखते हैं। जो लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं वे उच्च रक्तचाप और मधुमेह से मुक्त रहते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को अग्नि में तेल का उपयोग कर बनाया जाता है वे जठराग्नि के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा भोजन कई रोगों को जन्म देता है। अगर हम लंबा और खुशहाल स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो हमें तेल में तली हुई चीजों से दूर रहना चाहिए। भगवान गणेश का उदर यानी पेट मटके के समान है, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ भाप में बिना तेल के पके हुए पदार्थों का ही सेवन करते हैं।
चामर करना गजानना,
चामर करना गजानना। भगवान गणेश जी के विशाल कानों के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, हाथी के कान लंबे होते हैं और वे बारीक से बारीक आवाज को सुनने में भी सक्षम होते हैं। श्रवणम अर्थात भगवान की महिमा को सुनना आध्यात्मिक साधना का पहला सोपान है। सुनने के बाद उस पर मनन करना चाहिए जिसे मननम कहते हैं, फिर उसे आचरण में लाना चाहिए, इसे निधिध्यासन कहते हैं। भगवान ने आगे कहा कि हाथी दूषण और भूषण, दूषण अर्थात बुराई या निंदा, भूषण अर्थात प्रशंसा और स्तुति, दोनों को संभाव से लेता है। जब वो कुछ बुरा सुनता है तो अपने शरीर को इधर उधर घुमाता है, हिलाता है और फिर दूषित वस्तु को गिरा देता है, जबकि अच्छाई को चुपचाप धारण कर लेता है। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए।
विलंबित सूत्रा गजानना,
विलंबित सूत्रा गजानना। भगवान गणेश ने अपने विशाल काय उदर को संतुलित रखने के लिए या नियंत्रित रखने के लिए जो सर्प अपने पेट पर बांधा हुआ है उसे कहते हैं। श्री गणेश चतुर्थी की कथा में एक प्रसंग आता है जब भगवान गणेश जन्मदिन पर अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण कर जा रहे थे कि तभी उनका विशालकाय उदर उनके आवागमन में बाधित होने लगा। इस असुविधा से बचने के लिए और अपने अति विशाल पेट को नियंत्रित रखने के लिए भगवान गणेश ने एक सर्प को अपने पेट पर कस के बांध दिया, जिससे उनका पेट कुछ हद तक नियंत्रित हो गया। चंद्रमा ये सब देखकर हंस पड़े और भगवान गणेश को क्रोध आ गया और भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि हे चंद्र, अपनी जिस सुंदरता का तुम्हें घमंड है वो तेज आज से क्षीण हो जाएगा। और तब से भगवान चंद्रमा का तेज पूरी तरह विलुप्त हो गया। भगवान चंद्रमा सहित अन्य कई देवताओं ने भगवान गणेश के समीप जाकर उनसे कातर भाव से क्षमा याचना की। भगवान गणेश ने दया दिखलाते हुए कहा कि उनके श्राप को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे घटाते हुए भगवान गणेश ने कहा कि माह में एक बार चंद्रमा का तेज पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा और इस बार की तरह हर बार जब भगवान चंद्रमा को अपने किए पर पश्चाताप होगा तो उस प्रभाव से धीरे धीरे उनका तेज उन्हें वापस मिलता जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाएगी। और इसी प्रकार हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हुआ। कृष्ण पक्ष जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा अपना तेज धीरे 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 खोते रहते हैं और अमावस्या की रात में गुम हो जाते हैं। पश्चाताप रूपी क्षमा याचना करने के बाद भगवान गणेश की कृपा से अमावस्या के बाद पुनः शुक्ल पक्ष के रूप में उन्हें अपना तेज वापस मिल जाता है और पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा पूरे तेज और कांति के साथ आकाश में विद्यमान रहते हैं। इस भाव को हृदय में संजोकर आइए हम सब एक बार पुनः इस भजन को गाते हैं।
पाही पाही गजानना,
पाही पाही गजानना,
पाही पाही गजानना,
पाही पाही गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
पार्वती तनया गजानना,
मूषिक वाहन गजानना,
मूषिक वाहन गजानना, मोदक हस्ता गजानना,
मोदक हस्ता गजानना,
मोदक हस्ता गजानना, गजानना।
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साई राम।
इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।